लोथल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त यह भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला गुजरात में स्थित अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ दो मेल के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। नगर दो भागों में विभाजित था, दुर्ग या गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। प्राचीर के भीतर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर घर बनाए गए थे। घरों के निर्माण में प्रायः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुछ विशिष्ट भवन ही पक्की ईंटों के बने थे। नालियों तथा स्नानगृह की फर्शों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर 126x30 मीटर के आकार का एक भवन मिला है, जिसमें स्नानगृह और नालियाँ बने थे। इसे शासक का आवास बताया गया है। दुर्ग के ही समीप बने अन्नागार का अवशेष मिलता है। कुछ घरों से पशुओं की हड्डियां तथा तांबा कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, जली हुई कुछ हड्डियां, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां आदि पाई गई हैं। निचला नगर दुर्ग वाले क्षेत्र से 3 गुना विस्तृत था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। यह 4 खंडों में विभाजित था। खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व का पता चला है। नगर के उत्तर में बाजार, पश्चिम में व्यावसायिक भवन तथा उत्तर में भवनों के अवशेष मिलते हैं। बाजार में शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों के कारखाने स्थित थे। यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर मिली है। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहूल के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, जो 214x36 मीटर का है, एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी डॉकयार्ड बताया है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। यह नगर द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा गया था तथा इसी के जरिए गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। गोदीवाड़ा की प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता लगता है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहाँ आने जाने वाला माल अस्थायी तौर पर रखा जाता था। दोनों के बीच दुर्ग स्थित था, जहाँ रहने वाले लोग संभवतः यहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते होंगे। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नर्मुखों की अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है, जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य, सफाई के प्रति सजगता का प्रमाण है। ये सभी विशेषताएं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती हैं। इसी कारण लोथल के उत्खननकर्ता एस आर राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना पसंद किया है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से नियमित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी क्षेत्र में भवनों का निर्माण ठोस मिट्टी के चबूतरे पर किया गया है तथा ये आवासीय क्षेत्र के भवनों से बड़े हैं। गढ़ी की सुरक्षा दीवार में दो प्रवेश द्वार थे, एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूरब की ओर। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। दुर्गी के क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त एक कब्रिस्तान से समाधान की एक नई विधि, कलश समाधान, जिसे पॉट बरियल भी कहा जाता है, का उदाहरण प्राप्त होता है। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि घोड़े की कुछ हड्डियों का पाया जाना भी है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीरा था। सर्वप्रथम 1967 से 68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोशी ने की तथा 1990-91 के दौरान RS वेस्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। फलस्वरूप यहाँ से विकसित सिंधु सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास का साक्ष्य मिलता है, जो अपने आप में अद्वितीय है। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर में था। इस प्रकार यह भारत में स्थित दो विशालतम सैंधव स्थलों में एक है। इस प्रकार का दूसरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है, जहाँ इस सभ्यता के अन्य नगर केवल दो भागों दुर्ग तथा निचला नगर में विभाजित थे। धवलावीरा 3 भागों दुर्ग या मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित था। संपूर्ण क्षेत्र को घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई थीं, जबकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग किलेबंदी भी थी। 70 से 140 मीटर विशाल खुले क्षेत्र, जो कि आंतरिक एवं बाह्य प्राचीरों से महत्वपूर्ण स्थानों पर जुड़े हुए थे। प्राचीर युक्त क्षेत्र दो प्रकार के थे। पहला अहाता ऊंचे दुर्ग के भीतर तथा दूसरा नगर के बीच में स्थित था। संभवतः पहले में शासक वर्ग तथा दूसरे में पदाधिकारी निवास करते थे। मध्य क्षेत्र केवल यहीं से मिलता है। प्राचीर युक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए विशाल एवं भव्य द्वार बनाए गए थे। मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 12.80 मीटर लंबा तालाब खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24×70 मीटर के आकार का जलमार्ग बनाया गया था। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिलते हैं तथा मिट्टी सफ़ेद है। संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। यह भी एक विरल उपलब्धि है, जिससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी सुपरिचित थे, और यह कहीं बाहर से यहाँ नहीं आई। इसके अतिरिक्त सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं, जो काफ़ी बड़े हैं तथा विश्व की प्राचीन अक्षरपाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में यह एक अद्भुत खोज है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों के पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धवलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत सूख जाने अथवा नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभव हुआ। देसलपुर कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोतल के बीच स्थित यह सैंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से है। 1964 ईस्वी में केवी सौंदर्य राजन ने यहाँ उत्खनन करवाया। यहाँ से एक सुरक्षा प्राचीर मिली है। इसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेष मिट्टी तथा जेस्पर के बाट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, छेनी, अंगूठी तथा सेलखड़ी और तांबे की एक एक मुहर आदि हैं। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई एम के धौलीकर, एम आर रावल तथा वाई एम चितवाल द्वारा करवाई गई। यहाँ से विकसित तथा उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति के स्तर प्रकाश में आए हैं। दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं मिलता। यहाँ के अवशेषों से सूचित होता है कि यहाँ बंदरगाह, व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ तथा अन्य सुविधाएं थी। खुदाई में सैंधव मृदभांड जैसे लंबी सुराहियाँ, दो हत्थे कटोरे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांचली मिट्टी तथा सेलखड़ी के मनके आदि मिले हैं। एक मकान के कमरे से सेलखड़ी के हजारों छोटे मनके तथा तांबे की कुछ चूड़ियाँ एवं दो अंगूठियाँ मिलती हैं। कुंतासी भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में इस स्थल की खुदाई के दौरान प्राक सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृति के स्तर उद्घाटित होते हैं। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल, काले और चमकदार हैं। बस्ती के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों की बनी सुरक्षा दीवार मिली है। हाथी के अवशेष भी मिलते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित अगला जो स्थल है वह दैमाबाद है, जो प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई से सैंधव सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, प्याले, तस्तरी आदि हैं। कुछ बर्तनों पर दो सिंहों की आकृति बनी है। सैंधव सभ्यता का एक मानव समाधान भी मिलता है, जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है। इसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। गर्त में ईंटें की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सुरकोटता की कब्रों में भी पत्थर लगाए जाते थे। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ऐसा लगता है कि यहाँ सैंधव निवासी उत्तर काल में आए थे। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ के टीले की खुदाई में संस्कृति के विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव है, अन्य इसके बाद के हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सैंधव मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। सैंधव लिपि की युक्त एक ठप्पा भी प्रकाश में आया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित यहाँ के एक किले की खुदाई से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हम यहाँ यह इस संस्कृति के उत्तरकालीन स्तर का द्योतक है। खुदाई में मृदभांड, मृतपिंड तथा मनके मिले हैं। यहाँ से कोई मुहर नहीं मिलती। एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के दो अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दुआब में भी फैली हुई थी। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल ज्ञात हुआ है, जिसका प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों एवं समाचार माध्यमों से द्वारा किया गया। यहाँ एक खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। तीन अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह, मिंट हाउस रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक कोमल आनंद के अनुसार पहली बार किसी एक स्थल से इतनी मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इससे हड़प्पा सभ्यता के कई नवीन पक्षों की जानकारी मिलेगी। यहाँ से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा मृदभांडों के ही समान हैं। पुरातत्व विभाग के एक अन्य अधिकारी धर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा स्वर्ण छल्ले मांडी से मिलते हैं, उसी बर्तन या छल्लों का उपयोग हड़प्पा के लोग भी किया करते थे। इस स्थल की व्यापक पैमाने पर यदि खुदाई की जाए तो निस्संदेह भारत की प्राचीनतम सभ्यता की नवीन नगरी बस्ती का पता चलेगा। सामाजिक जीवन जो मांडी स्थल था, यह अमर उजाला के 3 जून 2001 अंक में प्रकाशित सूचना पर आधारित था। जो अगला है सामाजिक जीवन। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इन्हें चार वर्गों में बांटा जा सकता है। विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी तथा जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान करते हैं। खुदाई में तलवार, पहरेदारों के भवन तथा प्राचीरों के अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर समाज में क्षत्रियों से मिलते जुलते किसी योद्धा वर्ग के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में अनेक व्यापारियों तथा शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना की जा सकती है। अंतिम वर्ग भृत्यों तथा श्रमिकों का था, जिनमें चर्मकार, कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का निष्कर्ष निकालते हैं। व्हीलर का अनुमान है कि इनमें रहने वाले लोग दास ही थे, किंतु राव इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास स्थित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था तथा सभी लोग परस्पर मेल मिलाप से रहते थे। मिस्री तथा सुमेरियन समाज के समान सैंधव समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत नहीं होगा। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। साग सब्जियां, दूध तथा विभिन्न प्रकार के फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि शाकाहारी भोजन में प्रमुख थे। भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख, गड़ियाल आदि के मांस तथा मछलियां खाई जाती थी। इन जानवरों की यदि जली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले होते थे, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, कर्धनी आदि पहने जाते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। छोटे छोटे सोने तथा सेलकड़ी के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल ने एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है जिसके बीच में गोमेद के मनके हैं। यहाँ से कार्नेलियन के मनकों का लंबा हार भी मिलता है। कांचली मिट्टी, शंख तथा सेलखड़ी की बनी हुई चूड़ियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से सोने का बना एक बड़ा कंगन मिलता है। सोने, चांदी तथा कांसे की चूड़ियाँ, मिट्टी और तांबे की अंगूठियाँ आदि भी मिलती हैं। श्रृंगार प्रसाधन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल, पाउडर तथा श्रृंगार प्रसाधन की अन्य सामग्रियों से परिचित थी। चानूदड़ों की खोजों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। शीशे और कंघी का भी प्रयोग होता था। तांबे के दर्पण, छुरे, कंघे, अंजन लगाने की सलांकाएँ, श्रृंगारदान आदि भी मिले हैं। उनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख के बनते थे। खुदाई में घड़े, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच आदि बर्तन मिलते हैं। वे लोग कुर्सी, चारपाई, स्टूल, चटाई का भी प्रयोग करते थे। नवसारों तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों में मांग में लाल रंग भरा गया, स्पष्ट यह सिंदूर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा कालीन है। सैंधव निवासी यामोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। हड़प्पा से मिट्टी के पत्थर तथा कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिलते हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों में मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट, सलखड़ी आदि की बनी गोटियाँ भी मिलती हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। इनमें एक मिट्टी तथा दूसरा ईंट का बना है। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियाँ भी मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्थित कुरन नामक गांव के समीप खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं जिनका उपयोग सामुदायिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल यहीं से स्टेडियम मिलते हैं जो दुर्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित आयताकार हैं। इनमें 2 प्रवेश द्वार हैं। पहले से दुर्ग तक जाया जाता था जबकि दूसरे से व्यक्ति स्टेडियम में जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वडोदरा की खुदाई शाखा के उत्खननकर्ताओं ने कच्छ की खाड़ी में 4 माह के कठिन श्रम के पश्चात इन्हें खोज निकाला है। अधीक्षण पुरावेद शुभ्र प्रमाणिक के अनुसार निसंदेह यह एक पूरा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि लोथल अपनी गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था तो कुरन क्षेत्र अपने स्टेडियम के लिए नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा जैसा कि नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। संभव है यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहे। मछली फंसाने के कई कांटे मिलते हैं। एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। मछली फंसाना तथा चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियों के पहिए बड़ी संख्या में मिलते हैं। संभवतः बच्चे इन्हें गाड़ियों से जोड़कर मनोरंजन करते थे। माप तौल में घनाकार बांटों का प्रयोग होता था। खुदाई में तराजू का भी अवशेष मिला है। 0.5 पद्धति से भी उनका परिचय था। उत्खनन में बहुसंख्यक अस्त्र, शस्त्र, औजारों, हथियारों के नमूने मिलते हैं। युद्ध अथवा शिकार में तीर, धनुष, परशु, भाला, कटार, गदा, तलवार आदि का प्रयोग होता था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबा अथवा कांसे के बनते थे। अन्य उपकरणों में बरकछा, बरछा, कुल्हाड़ी, बसुली, आरा आदि प्रमुख हैं और दांतेदार होते थे। स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि इस सभ्यता के लोगों ने भौतिक सुख सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया था। कुरन से जो स्टेडियम मिला है इसका जो वर्णन टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली 1 अप्रैल 2004 में प्रकाशित सूचना पर आधारित है। आर्थिक जीवन, कृषि तथा पशुपालन। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहां के लोग प्रमुख खाद्यान्न गेहूं था तथा जौ थे। खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं जो गेहूं की प्रजातियां हैं ट्रिटिकम कॉम्पैक्टस तथा इस ट्रिटिकम स्फेरोकोकम थी। इनकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है तथा खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। संभवतः सिंधु क्षेत्र में लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे। गुजरात क्षेत्र में लोथल तथा रंगपुर के स्थलों से मृतपिंड में लिपटे हुए धान की भूसी मिली है जो अत्यंत निम्न कोटि के हैं। धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण हुड़ास से मिल रहा है, किंतु यह उत्तरकालीन है। लोथल तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। रोजदी से बाजरे की 6 किस्में जैसे सामा, कोटो, रागी, ज्वार आदि पहचानी गई है। हड़प्पा में मटर तथा तिल की खेती होती थी। सूती वस्त्रों के अवशेष से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों से सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता था। मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण तथा कांस निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। डीडी कौशाम्बी का विचार है कि सैंधव निवासियों के पास भारी हल नहीं था तथा वे पाषाण निर्मित कुदाल की सहायता से ही खेती कर लेते थे, किंतु यह विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं लगता क्योंकि कालीबंगन में सैंधव संस्कृति के पूर्व के स्तरों से नगर के सुरक्षा प्राचीर के बाहर जुटे हुए एक खेत के साथ मिलते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ के लोग न केवल हल द्वारा खेत की जुताई करते थे अपितु तो एक ही खेत में एक साथ दो फसलें भी उगाना जानते थे। संभव है उनके हल लकड़ी के रहे हों जो अब नष्ट हो गए हों, क्योंकि हलों के अभाव में व्यापक पैमाने पर कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल का प्रारूप तथा बनावली से मिट्टी के बने हल का पूरा प्रारूप प्राप्त हो चुका है। सिंचाई के लिए बांध तथा नहरें भी बनाई गई थी। सैंधव नगरों की समृद्धि को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापक नगरीकरण अत्यंत उपजाऊ भूमि की पृष्ठभूमि में ही संभव हो सका था। उस समय के कृषक पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन कर न केवल अपनी बल्कि नगर में रहने वाले विभिन्न शिल्पियों, व्यापारियों एवं सामान्य नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे। विभिन्न नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार या कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होते हैं। इनके रख रखाव की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती थी। इसके लिए राज्य की ओर से पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये बैंक या खजाने का काम करते होंगे, क्योंकि उस समय सिक्कों के प्रचलन का निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, अतः संभव है विनिमय अनाज के माध्यम से ही होता रहा हो। उल्लेखनीय है कि समकालीन मेसोपोटामियन सभ्यता के प्रायः सभी नगरों से अन्नागारों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें कुछ तो अत्यंत विशाल होते थे। अन्नागारों के पास ही अनाज कूटने के चबूतरे तथा मजदूरों की बस्तियों के भी अवशेष मिले हैं। इनके अतिरिक्त लोग घरों में अनाज रखने के लिए खंतियाँ भी बनाते थे। हड़प्पा से इस प्रकार की 3 खंतियाँ मिलती हैं। कालीबंगन से बड़े आकार के मर्तबान, जिसे जार कहते हैं, केक के ऊपर एक करके रखे हुए मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि लोग अपने खाने से अधिक उत्पन्न करते थे तथा भविष्य के लिए अनाज सुरक्षित भी रखते थे। अनाज को खली में कूट कर तथा सिलबट्टे द्वारा पीस कर आटा तैयार किया जाता था। प्राय सभी स्थलों से सिलबट्टे मिलते हैं। लोथल से एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। ऊपर वाले पार्ट में अनाज डालने के लिए छेद बनाया गया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। सैंधव मृदभांडों, मुहरों पर की गई चित्रकारियों तथा प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर हम उनके पालतू पशु पक्षियों के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। कुबड़दार वृषभ का अंकन मुहरों पर बहुतायत में मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि थे। हाथी से उनका परिचय था, क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। पक्षियों में मुर्गा, बत्तख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। कुछ पशुओं की धार्मिक मान्यता थी तथा कुछ को मांस के लिए पाला गया था। ऊंट तथा घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिलता, फिर भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुरकोटा के स्थलों से एक उबरदार ऊंट का जीवाश्म मिला है। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग इससे परिचित नहीं थे और यह आर्यों का प्रिय पशु था, किंतु लोथल, सुरकोटा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। लोथल से प्राप्त घोड़े के दूसरे तथा दायां ऊपरी चौघड़ के दांत तो बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के दांत जैसे हैं। बीबी लाल ने कालीबंगन के उत्खनन से घोड़े के अवशेष मिलने की सूचना दी है, अतः अब यह नहीं कहा जा सकता कि घोड़े का अस्तित्व आर्य सभ्यता में ही था। नेसदी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। शिल्प तथा उद्योग धंधे। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त सैंधव निवासी शिल्पों एवं उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। विविध प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन था। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों तकली सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। साहनी ने चांदी के एक कलश में कपड़े का टुकड़ा तथा मायके ने अनेक वस्तुओं में लिपटे हुए धागे प्राप्त किए हैं। सिंध प्रदेश में पटुए फ्लैक्स के अवशेष मिलते हैं। साल तथा धोती यहाँ के निवासियों के प्रमुख वस्त्र थे जिनका निर्माण यहाँ के कारीगरों द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो से जो पुरोहित की मूर्ति मिली है वह तिब्बतीय अलंकरण से युक्त है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के बुनकर वस्त्रों पर कढ़ाई करना भी जानते हैं। रंगे हुए बर्तनों से पता चलता है कि सैंधव लोग रंगाई करने के काम से परिचित थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि कुछ अन्य प्रमुख उद्योग धंधे थे। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा शीशा का उन्हें ज्ञान था और इससे विविध प्रकार के आभूषण एवं उपकरण बनाए जाते थे। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन बर्तन कड़ाही प्रसाधन सामग्रियां आदि प्रमुखता से मिलती हैं। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु 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 मूर्तियां बनाने में भी किया जाता था। चांदी के न केवल आभूषण अपितु बर्तन भी बनाए जाते थे, किंतु सोने का कोई भी बर्तन नहीं मिलता है। इसी प्रकार शीशे के भी कुछ उपकरण मिले हैं। धातुओं को गलाने, उन्हें पीटने तथा उन पर पानी चढ़ाने की विधि से लोग अच्छी तरह परिचित थे। शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत के भी उपकरण का निर्माण करना वे जानते थे। लकड़ी की वस्तुओं से पता चलता है कि बढ़ईगिरी का व्यवसाय भी होता था। गाड़ी के पहियों तथा तख्तों के कई अवशेष मिलते हैं। सैंधव भवन पक्की ईंटों के बने हैं। इससे सूचित होता है कि ईंट उद्योग भी काफी विकसित अवस्था में था तथा कुछ लोग राजगीर के व्यवसाय में भी निपुण थे। यहाँ के निवासी नावों का निर्माण करना भी जानते थे। सैंधव निवासियों ने विभिन्न उद्योग धंधों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनके कुछ आभूषण एवं बर्तन कला एवं तकनीक की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के हैं। यहाँ के कुम्हार विशेषता का प्रकार के बर्तन बनाते थे। ये चिकने और चमकीले होते थे तथा इनकी अपनी अलग पहचान थी। सैंधव सभ्यता के कुछ नगर विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। चानूदड़ो तथा लोथल में मनका बनाने का कार्य होता था। दोनों स्थानों से इसके लिए कच्ची धातुएं तथा लोथल का सीप उद्योग आदि भट्टिया, गुड़िया आदि भी पाई गई हैं। चानूदड़ो में सेलखड़ी, मोहरे, चट के बटखरे भी तैयार किए जाते थे। बालाकोट में भी सीप उद्योग सुविकसित था। सैंधव निवासियों द्वारा पहने जाने वाले कंगन तथा अन्य आभूषण संभवतः यहीं तैयार किए जाते थे। अगला, व्यापार तथा वाणिज्य। सैंधव निवासियों ने व्यापार में भी रुचि ली थी तथा उनका नान्तरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत था। वस्तुतः बड़े पैमाने पर व्यापार के बिना सैंधव नगरों का विकास संभव ही नहीं था। हड़प्पा तथा मोहन व्यापार के भी प्रसिद्ध केंद्र थे। दोनों नगर परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जली मार्गों से ही व्यापार किया करते थे, यद्यपि थली मार्ग भी अज्ञात नहीं थे। देश के भीतरी भागों जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात में जानवरों पर लाद कर माल भेजा जाता था। चूंकि सैंधव नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक सम्पदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों तथा विदेशों से इसे प्राप्त करते थे। वे मैसूर से सोना, राजस्थान बलूचिस्तान तथा मद्रास से तांबा, अजमेर से शीशा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगाते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमानिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार की धातु तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पल्ले मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे तथा कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तूलाकार आदि प्रकार के भी मिलते हैं। लोथल तथा मोहनजोदड़ो से क्रमशः हाथी दांत एवं सीप निर्मित एक एक पैमाना भी मिलता है। सैंधव व्यापारी अपने मोहर रखते थे जिन्हें वे व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगा देते थे। भार ढोने के लिए बैलगाड़ियों, हाथियों, खच्चर तथा बकरों के काम में लाया जाता था। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी भी मिलती है। सैंधव निवासों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। उनके अधिकतर क्षेत्र में सुविस्तृत समुद्र तट था, जिसका भरपूर उपयोग उन्होंने किया। इसके माध्यम से उन्हें बाह्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सुगमता हुई। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ उन्होंने घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे थे। उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान के सुरतगोई नामक स्थान से उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। इसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी तथा मृदवांड उमन के मुहर आदि भी यहाँ से मिलती है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि सैंधव लोगों ने इस क्षेत्र को आबाद किया था। अफगानिस्तान, आर्मेनिया तथा ईरान से चांदी तथा लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत विवरण पुरातत्व तथा लेखों में मिलता है। यहाँ से थल तथा जल दोनों ही मार्गों द्वारा व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थलों सुमेर, ऊर, तेल, अस्मर, किस, उम्मा, लगस, निप्पुर, असुर आदि से सैंधव कारीगरों तथा उनके प्रभाव से निर्मित अनेक वस्तुएं जैसे करकेतन, सीप तथा हड्डियों के मन के मुहरे आदि प्राप्त हुई हैं, जो सैंधव व्यापारियों द्वारा वहां पहुंचाई गई होंगी। लोथल से तांबा तथा हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया नगरों को प्रचुर मात्रा में भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामियन उत्पत्ति की विविध वस्तुएं खानेदार मन के कांसे के पिन, सिलकड़ी की बटन आदि सैंधव नगरों में मिलती हैं। उर की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार दान मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर तथा ठीकरे के ऊपर सुमेरियन नावों के चित्र अंकित हैं, जो समुद्री व्यापार का सूचक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि अभिलेखी विवरण से भी होती है। सैंधव लिपि के अपठित रहने के कारण हमें यहाँ के लेखों से तो इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती, किंतु सारगोन युगीन सुमेरियन लेख इस संबंध में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। व्यापार के प्रसंग में तीन स्थानों मेलुहा, दिलमुन तथा मगन का उल्लेख मिलता है। इसमें मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश से की गई है तथा ज्ञात होता है कि यहाँ के उर के व्यापारी सोना, तांबा, कार्नेलियन जो लाल पत्थर होता था, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, विशेषता काली लकड़ी जिसे आबनूस कहते हैं, मोर, पक्षी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर ही था, जहाँ सैंधव व्यापारी विविध प्रकार की वस्तुएं लेकर जाते थे। यहाँ जिन आयातित वस्तुओं की सूची दी गई है, उनकी सिंधु क्षेत्र में एक अधिकता थी तथा विभिन्न स्थलों की खुदाई से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। कार्नेलियन के मन के पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। चानूदड़ो तथा लोथल में इनके निर्माण का कारखाना ही था। मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटा आदि से हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। मोर पक्षी का निर्यात प्राचीन समय में भारत ही करता था। जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख है। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों ही स्थान सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे तथा व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डेनमार्क के पुरातत्ववेत्ताओं के निर्देशन में बहरीन द्वीप के रस अल कला एवं बर्बर नामक स्थानों की खुदाई करवाई गई। यहाँ से नगर योजना के साक्ष्य मिलते हैं तथा सैंधव उत्पत्ति की विविध वस्तुएं जैसे मुहरे, घनाकार बाट आदि भी प्राप्त होते हैं। फारस की खाड़ी में स्थित फैलका से सिलगड़ी की वृत्ताकार मुहरें मिलती हैं, जिन पर सैंधव लिपि के लेख हैं। बहरीन के स्थलों में से फारस की खाड़ी शैली की मुहरें भी मिलती हैं। इनसे सूचित होता है कि फारस तथा हड़प्पा के व्यापारी परस्पर मिलकर व्यापार करते थे तथा सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में परस्पर बिचौलिए का काम करते थे। इसी प्रकार ओमन द्वीप के विभिन्न स्थलों से भी सैंधव मूल की कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। कुछ भेदभांडों के ऊपर पीपल की पत्तियों तथा मोर की पक्षी का चित्र मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोथल से सुतका गेंडोर होते हुए जो व्यापारी फारस की खाड़ी के देशों को जाते थे, वे ओमन में पड़ाव डालते थे। बाद में कुछ लोग यहाँ बस भी गए होंगे तथा उनकी सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में प्रमुख भूमिका रही होगी। कुछ विद्वानों का विचार है कि मेसोपोटामिया में सैंधव व्यापारियों की कोई बस्ती रही होगी। मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1750 में ही था, क्योंकि इसी काल में सैंधव मुहरें अधिक मिलती हैं। ईसा पूर्व 1750 के लगभग से हम वहाँ के लेखों में मेलुहा का उल्लेख नहीं पाते हैं। यह इस बात का सूचक है कि इस समय तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क टूट गया था। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र में हड़प्पा के प्रकार की गुड़िया मिली है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध अपेक्षाकृत कम था। मिस्र के साथ व्यापार प्रधानतः लोथल से होता था। यहाँ के उत्खननकर्ता राव को गोरिल्ला की एक मूर्ति तथा मम्मी की एक आकृति मिली है, जिससे मिस्री संपर्क का ही परिणाम बताया गया है। पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए भारतीय मनके भी प्राप्त होते हैं। सीरिया के हम्मा नामक स्थान से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर एक सींग वाले वृषभ का चित्रण है। तुर्कमेनिया गणराज्य पश्चिम एशिया में जो है, मैं कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अल्तिन डेपे, नामजडगा डेपे, अनाऊ आदि से भी सैंधव प्रकार के भांड, मुहरे, मनके, ताम्रपत्र आदि मिलते हैं। इसे भी सैंधव संपर्क का परिणाम माना गया है। क्रीट के साथ भी सैंधव लोगों का किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्यमेव रहा होगा। यहाँ के कुछ भित्ति चित्र, जिन पर बैल तथा मनुष्य के युद्ध का दृश्य अंकित है, मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित कुछ चित्रों के समान है। दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। यह सब घनिष्ठ संपर्क का ही परिणाम प्रतीत होता है। इस प्रकार सैंधव निवासियों का बाह्य व्यापार उनके आंतरिक व्यापार की अपेक्षा अधिक विकसित था, जिसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। निश्चयतः इसके लिए व्यापारियों का एक सुदृढ़ संगठन भी सिंध प्रदेश में कार्यरत रहा होगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार ही था। इसका जो वर्णन है, नगर तथा भवन, सामाजिक आर्थिक जीवन, लिपि का प्रचलन, संगठित नागरिक आदि को संयुक्त रूप से भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जा सकता है।